आगे देखते हैं आयत 17 से 24, रुकू नंबर 9 है। अल्लाह ताला को पहली तरजीह पे रखना है। माकान लिल मुशरिकीन यामुरू मसाजिद अल्लाह, लायक नहीं कि मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं। इनके अमल गारत और अकारत हैं और वो दायमी तौर पर जहन्नमी हैं। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों, तवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हमारा नाम इन लोगों में लिख लें जो मस्जिदों और मदरसों की आबादकारी वाले हों, क़यामत पे ईमान हो, नमाज ज़कात की पाबंदी हो और अल्लाह के सिवा किसी और का डर न हो, और अल्लाह में हिदायत याफ्ता लोगों का इमाम बना दे। आजाल तुम से क़ायत अल हाज, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया? जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया, और ये अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं, और अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। आगे चूँकि आयतें इकट्ठी हो जाती है ना, तो आप शायद कभी कभी मेरी बात रिलेट ना करते हो। ये आयत पर भी बात करूँगी तो अभी नोट कर लीजिए। एक होती है बैठ के नेकियाँ करना, मस्जिदों को ठीक कर दिया, हाजियों को पानी पिला दिया, अपनी जगह पे बैठे हैं, थोड़ा सा ये भी काम कर दिया। अल्लाह कहते ये भी अच्छा है, लेकिन क्या ये अल्लाह की राह की जिद्दोजहद के बराबर हो सकता? और जिद्दोजहद अब आप समझ चुके हैं कैसे एक मकसद बनाकर आप दुनिया के अंधेरे दूर करने के लिए, अल्लाह का नूर फैलाने के लिए गली गली, कूचा कूचा, बस्ती बस्ती दस्तक करते हैं। ये काम सिर्फ अल्लाह करवाता है तो होता है। हमारे पांव पकड़े हुए ज़मीनों ने, हमारे घरों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे मर्दों की जॉब्स ने, हमारे संध्यानों ने, हमारे फैमिली प्रेशर्स ने, हमारी बिजनेस, हमारी डील्स ने, हम बावजूद कोशिश के नहीं करते। अगर अल्लाह ने आपको चुन लिया तो बस सर सजदे में रखा करें, और ज़्यादा ना कर सके तो घोड़े की तरह रुकू की कैफियत में रहा करें कि अल्लाह इसको छीनना नहीं। कभी कभी तो आपको एक किस्म की गशी पड़ जाती है कि अल्लाह ये नेमत मुझसे ना छीनना, पता नहीं ये मिल कैसे गई। हमें तो अपने अंदर को खूबी नहीं दिखती कि हम तेरी किताब पढ़ें और पढ़ाएं और इसकी इतनी खिदमत करें जो माशाल्लाह आप लोग करते हैं। मैं अपने वॉलंटियर्स और सारे जो हमारे अंसारुल्लाह और जो भी आप जैसे लोग हैं उनको देख के कई दफ़ा हैरान होती हूँ कि पता नहीं इनका अजर कितना होना है कल। ना कुछ देखा, ना जाना, ना लोग इनको जानते, ना इनको कुछ मिलना, ना मिलाना, इनको क्या मिलना है। ये काम बैठ कर पानी पिलाने से बहुत बेहतर है। अब जरा आगे चले फिर इस पे बात करेंगे। आयत 20, और जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना आमनू वहाजरू, और वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की और अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं और यही लोग मुराद पाने वाले हैं। इन्हें इनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की। वल्लाह ही आपको ये खुशखबरियाँ महसूस होंगी। युबशिरुहुम रब्बुहुम, सारी दुनिया फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, दुखी, घबराहटें, गम, खौफ, जंग लग रही, ये हो रहा, महंगाई हो गई, बिजली चली गई, और आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। युबशिरुहुम, और अब खुशखबरियाँ देता है। जैसे शादी से पहले कहते हैं अक्सर बच्चियाँ खोई खोई रहती हैं, मोमिन दुनिया में जन्नत के ख्यालों में खोया खोया रहता है। पता नहीं कैसे होंगे कपड़े, पता नहीं घर कैसा होगा। आप देखिए कि अब तो शादी वो रही नहीं ना, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बच्चियाँ शादी से पहले भी सब कुछ ही पहन ओढ़ लेती हैं, सब कुछ पहले ही मिल रहा होता है, और भी सारी ख्वाहिशात पूरी कर ले बच्चा है इंसान। लेकिन मोमिन अपनी दुनिया को संभाल संभाल के रखता है। अच्छा छोड़ो ना, अच्छा उधड़ा हुआ सी लेंगे, अच्छा फटा हुआ इसको सीधा कर लेंगे, अच्छा कौन देखता है, अच्छा जला है तो फिर क्या हुआ, वहाँ जाके पहनेंगे, वो जन्नत, वो जन्नत, वो खो जाता है। और वो दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत। और यही साहबा के लिए अलामा इकबाल ने कहा था, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौके खुदा। ये ज़ौके खुदा ही है पूरा, पूरी सूरत तौबा और सूरत अनफाल साहबा का ज़ौके खुदा ही दिखा रही। ज़ौक क्या है? टेस्ट। खुदा ही क्या है? खुदा से बस, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का काम, अल्लाह का रास्ता। तो फिर अल्लाह खुशखबरियाँ देता है अपनी रहमत और रजामंदी की और जन्नतों की। इनके लिए तो वहाँ हमेशा की नेमतें, दवामी नेमतें। दुनिया में कोई ले भी ले कोई नेमत, आप चले जाए मियाँ के साथ किसी फन प्लक्स में, तीन चार दिन के बाद आपको वो होटल चुभेगा जहाँ पहले दिन जाके अपने हाव भाव की थी। बड़े से बड़े रिजॉर्ट में जाकर देख लें, पहले दिन अच्छे, दूसरे दिन ओके, तीसरे दिन ओके, आप चौथे दिन देखें आप कहेंगे घर की दाल सब्जी याद आ रही। आप हरम में जाइए, लोग बड़े बड़े पैकेजेस लेके फाइव स्टार होटल्स में जाते हैं, पहले दिन तो आंखें खुल जाती हैं। और अल्लाह माफ़ करे जो मुसलमान होटलों में भी जाके खाना ज़ाया कर रहे हैं आज के दौर में। 5 स्टार पैकेजेस फ्री, ऑल यू कैन ईट, वो हम कहते हैं ऑल यू कैन ईट का मतलब है कि ऑल यू कैन थ्रो, जो कुछ मर्जी फेंक दो। पहले दिन बच्चे भी पागल हो, ये देखे इधर ये है वो है, कितने बड़े बड़े नाश्ते पानी लगे होते हैं, आप गए होंगे कभी, अंदाज़ा होगा आपके जहनों में आ रहा होगा। और दूसरे दिन फिर ओके पे वही चीज़ है, अच्छा आज बस थोड़ा सा फ़र्क है वो। तीसरे दिन के बाद आपको वो होटल नहीं अच्छा लगता, आप कहते हैं, आप कहते हैं इन्होंने कितने रियाल हमसे चार्ज किए थे एक नाश्ते के। आप किसी एक बंदे को अपने नाश्ते पे बुला लें तो आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने पैकेज में कितने पैसों का एक नाश्ता दिया। फिर बंदा थक जाता है। जन्नत क्या है? हमेश की, वहां से दिल नहीं भरेगा। एवरी डे न्यू टेस्ट। आप इफ्तारी में रोज एक ही चीज बनाते हैं, आपका रोज एक ही जैसी 10 चीजें खा के दिल भर जाता है। अगर आप एक आज कल दूसरी परसों, तो आपको चेंज लगेगा। जन्नत में जाकर दिल नहीं भरेगा, वहां की हर नेमत नेमत रहेगी, वहाँ वो हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब है, अल्लाह आप सबको जन्नत की नेमतें अता करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब यहाँ ऑपरेशन होने लगा है, कुछ चीर फाड़ होनी है, इस पे ज़रा सा दिल मजबूत रखिएगा, घबराइए नहीं, कमज़ोर दिल वाले ज़रा दिल थाम के सुने। ईमान वालों, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, अगर वो कुफर को ईमान से ज़्यादा अजीज़ रखे, तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनाहगार जालिम है। आप कह दीजिए, देखिए नबी से कहलवाया है, ये कुरान का एक अंदाज है, कुल। और आगे जाके देखेंगे सूरह अज़ाब में, औरतों को भी पर्दे और हिजाब का हुक्म अल्लाह ने नबी की जुबान से कहलवाया, किस नबी की लाज रखना। और इस नबी से मोहब्बत का दावा है ना, तो आप जरा इनको कहिए कुल, आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंबे कबीले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो, करोड़ों भी है ना फिर भी डर होता है, लाखों भी है फिर भी डर होता है, किस बात से? मानना पड़ जाए। और वो हवेलियाँ जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और इसकी राह के जिहाद से भी ज़्यादा अजीज़ हैं, फतरबसू, तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह अपना अजाब ले आए, अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। ये है जी रिश्तों का इम्तिहान, तराजू आपके मेरे हाथ में दे दी अल्लाह ने। अगर शुरू की आयत जिसमें हाजियों को पानी पिलाने की बात थी, आयत 19, तो उसके बारे में तफसीर इब्ने कसीर में आता है, हजरत अब्बास ने अपनी कैद के ज़माने में कहा था कि तुम अगर इस्लाम और जिहाद में थे तो हम भी तो अल्लाह के घर की खिदमत और हाजियों को आराम पहुंचाने में थे। इस पर याद होती आजल तुम सिकायत अल हाज। आगे चलते हैं तो आयत 23 और 24, जो एसिड टेस्ट लिखी है इंग्लिश में, इस एसिड किसको कहते हैं? एसिड तेजाब। केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, कुछ टेस्ट तेजाबों के जरिए किए जाते हैं। ये आपका वेरा वो एसिड टेस्ट है, चुभता पड़ा है, टेंक्चर, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सहाबा का इम्तिहान था, आज हमारा भी है। इस साइट में 8 मोहब्बतों को रखा जा रहा है, यानी तकड़ी और तराजू और बैलेंस जो नाम उसका रख लीजिए, उसके एक पड़े में 8 मोहब्बतें डालें, बाप दादा भाई बेटे बीवियाँ कुंबा माल घर तिजारत, और दूसरे पलड़े में डालिए अल्लाह उसके रसूल और उसके रास्ते की जद्दोजहद को, चूज़ कीजिए क्या करते हैं। सहाबा ने बैलेंस के साथ बेहतरीन चीज़ को चूज़ किया था। हकीकत यह कि अल्लाह के रास्ते का जो काम है ना, और अल्लाह वाला बन जाना और ये बनना जो इस वक्त बनने की पूरी कोशिशें हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। अब चूंकि यहाँ मक्का और मदीना के कुछ हालात का तकाबुल है ना, तो एक जुमला लिखिएगा, जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था ना, तो अरब की जो प्रैक्टिकल सिचुएशन थी ना, उसके लिए कमेंट ले लीजिए। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा थे और मुशरिकीन बैतुल्लाह के गिर्द, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के नबी के साथ अजमतों की वो तारीख वाबस्ता नहीं हुई थी जिसको आज हम जानते हैं। लोगों को आप एक आम इंसानों की तरह के इंसान दिखते थे। दूसरी तरफ मस्जिद हराम, हजारों बरस की तारीख के नतीजे में अजमत और तकद्दस की अलामत थी, मुशरिकीन की नज़र में अपनी तस्वीर तो ये थी कि वो एक मुकद्दस तरीन मरकज के खादिम और वॉलेंटियर है, आबादकार है। और आप अब ये तो समझ ही चुके हैं ना कि बैतुल्ला की खिदमत ये कुफर में भी करते थे, क्योंकि हजरत इब्राहिम से ये चल रही थी, तो कहते थे हम तो हजारों साल पुरानी बिल्डिंग के टेक केयर हैं, वाह वाह वाह। दूसरी तरफ वो मुसलमानों को देखते, अब जरा इमेजिन कर रहे हैं आप, इंजॉय कर रहे हैं इसको। मुसलमानों में वही अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, अशरफ, मुबशरा, और फिर इसी तरह बदरी सहाबा, और फिर इसी तरह से आगे दूसरे सहाबा, उनको देखते कि ये तो क्या एक ऐसे शख्स के पीछे लगे हुए हैं जो बस एक दीवाना है, मजनू। उनको लगा कि अनोमिनु कमा मनसुफा, क्या हम ऐसा ही मान लें जैसे बेवकूफ। देखो अबू बकर बेवकूफ बन गए, एक ऐसा शख्स जिसका बाप भी नहीं, जिसकी माँ भी नहीं, ठीक है अखलाक बड़ा अच्छा है, ठीक है सादे कमीन भी, और उस वक्त सादे कमीन लोग नहीं कहते थे, आज हम कहते हैं। हाँ किरदार से बहुत मरूफ थे अल्लाह के नबी के। अल्लाह सुबहान तआला ने इन सारी आयात में बता दिया कि मक्का वालों का ख्याल कितना गलत था। उन्होंने ज़ाहरी काबा को, जिसके साथ एक तकद्दस था, एक हिस्ट्री थी, उससे अपने आप को जोड़कर खुद को नेक समझ लिया। हाजियों को पानी पिलाना नेकी है, उसकी सफाई सुथराई नेकी है, काबा पे गिलाफ चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर सोने के पानी के साथ, सोने की तारों के साथ कुरान की आयतें लिख दीजिए, फर्श टूट जाए उसके अंदर मरम्मत कर दीजिए, उसके आगे तो बड़े खूबसूरत नुमाइश की चीज़ें लगा दें। आज भी है ये सब, ये भी याद रखिएगा, आज भी ये सब हो रहा है। लेकिन सिर्फ ये काफ़ी नहीं है, अल्लाह कहते क्या यो ना माल के बराबर है कि जब एक इंसान अल्लाह को पाले और उसको आखिरत की फिक्र लग जाए, फिर वो अपनी ज़िंदगी और अपने सारे एसेट्स, अपने सारे असासे को अल्लाह के हवाले कर दे, वो दूसरी सारी बड़ाइयों का इनकार करके एक अल्लाह को अपना बड़ा बना ले। सच्चाई को पाने वाले दरअसल वो लोग हैं जिन्होंने इस दर्जे पे नेकी की, ना कि जाहरी नेकियां की, जो कुर्बानी की हद तक सच्चाई से ताल्लुक रखे, ना कि महज सतही नुमाइशी कार्रवाइयों का नाम नेकी रख दे। उमरे पे जाइए, तस्वीरें खिंचवाइए। मैं सबकी नहीं बात करती, अगर मैं कभी मेरे मुंह से आप ऐसा सुने ना तो वल्लाह ही आप लोग नहीं हैं, आपको तो मैं जानती भी नहीं। लेकिन ये आटे में नमक के वो लोग हैं जो ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं, काबा में जाके सेल्फियां बनाते हैं, लाखों लगा कर जाते हैं और वहां से ताल्लुक बिल्ला नहीं लेकर आते। तो इन आयतों पे कमेंट ले लीजिए कि अल्लाह से ताल्लुक की दो किस्में हैं। एक ताल्लुक वो होता है जो रस्मी अकीदे की हद तक होता है, इसमें इंसान कुछ दिखावे के अमल तो करता है, मगर अपने को और अपने माल को अल्लाह की राह में नहीं देता। ये 11वें पारे में आप सुनेंगे भी इंशाल्लाह। दूसरा ताल्लुक वो होता है कि जब इंसान अपने ईमान में इतना संजीदा हो कि इस राह में इसको जो कुछ छोड़ना पड़े वो इसको छोड़ दे, आराम करना पड़े तो आराम छोड़ दे, रोजे में रमजान में सफर करना पड़े तो घर के आराम को छोड़ के सफर करे, और जो चीज़ देनी पड़े इसको देने के लिए तैयार हो जाए। लिखिए यही है दूसरी किस्म के बंदे जो मरने के बाद अल्लाह के यहाँ आला तरीन इनामात से नवाजे जाएंगे। इनको कहा जाता है साबिकून अल्वलून, और इनको कहा जाता है ये वो लोग हैं कि जो जन्नत के वी आई 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 पीस होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे, ये हैं जिनको सूरत वाकया में अल्लाह ने कहा साबिकून अल्अव्वलून। बाकी सब ने असहाबुल जमीन बनना है, मैं आपको बता दूं अल्लाह मेरे जैसे निकम्मे को असहाबुल जमीन भी बना देता अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उस पर भी खुश हूँ। हमारी एक बड़ी प्यारी उस्ताद थी, ह्यूस्टन में तजवीद की थी, अरब टीचर थी, तो वो कहा करती थी आई डोंट माइंड, अरबी और इंग्लिश का एक्सेंट मिलता ना तो उनका खुलासा क्या होता था, एक दफ़ा अल्लाह मेरा पाँव जन्नत में डलवा दे मैं इस पे खुश हूँ, इसके बाद अल्लाह जो दे ना दे मुझे नहीं परवाह। आप कहते हैं ना टिकट दीजिए भाई सफर करना है, जहाज की दुम में बिठा दे मैं बैठ के चली जाऊंगी, मैं खड़ी होके चली जाऊंगी, मुझे टिकट चाहिए क्योंकि मुझे जाना है, मुझे नहीं फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे बिजनेस क्लास नहीं चाहिए, मुझे वो लेट के स्लीपर में नहीं जाना, मुझे वो कैबिन नुमा रूम में नहीं सफर करना, मुझे पहुंचना है, आप मुझे टिकट दीजिए। अच्छा एक का नहीं दो नहीं 5,000 का दे दे मुझे, दे दीजिए मुझे जाना है। जन्नत में एक दफा कदम पड़ जाए आपका मेरा, बाकी रास्ते हम खुद ही बना लेंगे। आप कहते हैं ना एक दफा मल मार लो, एक दफा जाके वहां सामान रख के जगह एक्वायर कर लो, उसके बाद क्या होगा, जो भी हुआ। देखिए ना आप किसी के घर जाते हैं तो वो आपसे ताल्लुक की बुनियाद पे आपकी खातिर करता है ना, माजरत के साथ मौलवी साहब को लोग बाहर बिठा देते हैं, ट्यूटर साहब को आप ला कर डाइनिंग रूम की चेयर पे बिठाते हैं क्योंकि साइंस टीचर है, और अगर कोई इंग्लिश टीचर आ जाएगा तो हो सकता है उसको घर के बड़े स्पेशल गेस्ट रूम में भी बिठा दें। आप किसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं जितना वो आपके लिए अहम, जितना आपसे उसको प्यार है, आपको उससे प्यार है जितना वो आपके लिए जरूरी है। हम दीन के साथ ताल्लुक में कैसे होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद फायदा हो जाए, क्योंकि इन पारों में तो हमने अपने ईमान को जिस हद तक कोशिश किया करना है। आप देखिए कि आपके घर में किसी का भी मिसाल है, हो सकता है किसी को भी ना फायदा दे, कि एक मिसाल है कि आज हमारे इस्लाम के साथ ताल्लुक है। आप क्या चाहते हैं किसी को भी लाएं जहन में, माशाल्लाह आप सब किधर खानदान है, आपके खानदान में आपके भाइयों के बच्चे भी होंगे, बहनों के भी होंगे, जो क्लोज फैमिली, क्योंकि अब अगली आ जा रही ना, मैं आपको उसका माइंड बना रही हूँ कि रिश्तों की जंग में कैसे जीतना है। अच्छा, जो आपके अपने खानदान के लोग होते हैं ना, जो अपने लोग हैं, वो आपके घरों में आते हैं जाते हैं, आपके हस्बैंड आपको कॉल पे कहते हैं बेगम आज एक मेहमान आ रहा है जिससे मेरा बिजनेस रिलेशन है, आप क्या करेंगे? और है भी बड़ा मुअद्दब बंदा, बड़ा वादब है, उसे डील भी है, व्हाटएवर, आप क्या करेंगे? आपके घर के साथ बाहर जहाँ भी कहीं कोई आपका गेस्ट रूम है जिसको आपने बहुत वेल इक्विप्टेड किया हुआ है, आप उसको खुलवाएंगे, उसको फ्रेश अप कराएंगे, हर चीज़ जाके नौकरों से कहेंगे इधर रखा है पानी, रखा है ये, रखा है टॉयलेट पेपर, रखे है टॉवल, रखा ना, अब वो मेहमान आ गया आपके मियाँ का, कोई भी कुलीग या वट एवर, उसको बिठाएंगे, खाने देंगे, सब कुछ करेंगे, यानी आप उससे भी ज़्यादा उसकी इज्जत करेंगे जितनी आप अपने रिश्तेदारों की करते हैं, जो जब चाहे आ जाए क्योंकि उनका अपना घर है। अच्छा, अब वो जो घर के बाहर दूसरे मूवमेंट हमारे गेस्ट रूम घर से बाहर ही होते हैं ना एक साइड पे, अब वो उधर है बस, आप उसको हर चीज़ पहुँचा रहे हैं, उसको रिमोट कंट्रोल, वाईफाई तो देना ही है, उसके बगैर तो वो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, आपने उसको अपना वो इंटरकॉम ज़रूरत घंटी बजा दीजिएगा। लेकिन अब सवाल जो आ गया ना वो बड़ा अहम है, क्या वो उठकर किसी वक्त भी निकल कर आपके ड्राइंग रूम में आ सकता है, आपके लॉन्ज में आ सकता है, आपका बेडरूम नॉक कर सकता है? अब आप समझिए आपने किया क्या, आपने इसकी खूब इज्जत की सब कुछ, लेकिन आपने इसको अपना नहीं समझा। अब इस गेस्ट की जगह नाम लिखिए इस्लाम, इस्लाम के साथ ये जो अल्लाह ने अभी तकाबुल दिया है ना, कुछ लोगों का ताल्लुक बड़ी रिस्पेक्ट का है, अजाल तुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम, हम उसको इज्जत भी देते, हम ऑनर देते, कुरान को पकड़ने से पहले हाथ धोते, वुजू करते, खूबसूरत जुजदानों में रखते, हम उम्रे पे जाएं हम नए सूटकेस खरीदते हैं क्योंकि अल्लाह के घर जाने लगे हैं, हम नई चप्पलें खरीदते हैं क्योंकि ये पुरानी चप्पलें पाकिस्तान के गटरों के पानी से ना गिरी हो, हम हर चीज़ करते, लेकिन हम इस्लाम को अपने घरों में, अपनी जिंदगियों में, अपने ड्राइंग रूमों में, अपनी शादियों में, अपने बच्चों की खुशियों में आने नहीं देते, इंटरफेयर नहीं पसंद करते कि इस्लाम उठकर हमारे खुशी के मौके पे आ जाए, बस ये फ़र्क है, आप समझिए। अब ये जो आयत है ना, ये आयत तो बाकी बंदे को उसका असल खोल के ना उसके हाथ में दे देती है, कुल इन का ना अबा हुकुम व अबना हुकुम, लिस्ट है पूरी। आप देखिए कि लोगों के लिए अपना खानदान, अपनी जायदाद, अपने मुआशी मुफादात सबसे कीमती होते हैं। आप कहते हैं ना सबसे कीमती चीज़ क्या है, लोग कहेंगे प्लेटिनियम, कोई कहेगा नहीं डायमंड, कोई कहेगा गोल्ड, नहीं ये कोई नहीं है कीमती, पैसा है तो आपके लिए दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें आम हैं। कोई कहता है फलाम ब्रांड की चीज़ बड़ी कीमती है, कोई कहता है कुछ भी नहीं लो, क्या है 25,000 रुपये का बाया, मैं जाके अभी ले आऊँगी, क्या फ़र्क पड़ता है? सबसे कीमती खानदान, जायदाद, माशी मुफादात, इन्हीं चीज़ों को इंसान सबसे अहम समझता है, हर दूसरी चीज़ के मुकाबले में वो इनको तरजीह देते, प्रायोरिटाइज करते हैं, अपना सब कुछ इनके ऊपर निसार कर देते हैं। इस किस्म की जिंदगी दुनियादाराना जिंदगी होती है, ऐसा इंसान जो कुछ भी पाता है ना वो इस दुनिया में पाता है, और अगर खुदा न खास्ता इनमें किसी चीज़ में अल्लाह की नाफरमानी आ गई ना, तो मौत के बाद इनमें से कोई एक भी साथ नहीं होगा, बल्कि यौम यफिर्रुल मरु वाली आयत आप सोच लीजिए सूरह बसा में 30वें पारे में आएगी, यानी ये साथ नहीं होंगे बल्कि हमसे भाग रहे होंगे, माँ भी भागेगी, बाप भी भागेगा, बीवी भी, और यफ्तदी में भी बनी, अल्लाह सूरह मारिज में कहते हैं बदलों में बेटे औलादे दे के लोग बचना चाह रहे होंगे इसके बरक्स। अब दूसरा, आज तो हम उन लोगों की बातें कर रहे हैं ना जो हमारा गोल है, एक दूसरा शख्स, एक दूसरी जिंदगी जहाँ इंसान अल्लाह रसूल और आखिरत, आपने देखा है 8 थिंग्स वर्सेस 3 थिंग्स, ऐसे ही है ना, एक पलड़े में 8 मोहब्बतें तो दूसरे पलड़े में 3, जब ये 3 चीज़ें अल्लाह रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद, उसकी कोशिश, जब बंदा इसको अहमियत देता है उसकी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट ये है, उसका क़िबला और काबा ये है, उसके सारे मामूलात उसके गिर्द, उसके सारे सफ़र उसके इर्द गिर्द, उसका जीना, उसका मरना, उसका उठना, उसका बैठने, उसके ट्रैवलिंग सब उसके ज़िम्मे हैं। फिर वो उसकी खातिर इनमें से हर चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये दूसरी ज़िंदगी को आप कह सकते हैं अल्लाह ओरिएंटेड लाइफ, खुदा रुखी ज़िंदगी, गॉड कॉन्शियस ज़िंदगी, खुदा परस्ताना ज़िंदगी, जो भी नाम दे दें। और ऐसे ही लोगों के लिए आखिरत में अबदी जन्नतों के दरवाजे खोले जाएंगे। देखिए, एक ज़िंदगी वो होती है जो दुनियावी ताल्लुकात और दुनियावी मुफादात बेनिफिट्स की बुनियाद पे कायम होती है, जो हमारी चलती है मोस्टली। दूसरी ज़िंदगी वो होती है जो ईमान की बुनियाद पे कायम होती है। दोनों में से जिस चीज़ को भी इंसान अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाए, आज आपने बनाना है, वो हमेशा इस कीमत पर होता है कि वो इसकी खातिर दूसरी को छोड़ सकता है कि नहीं। यानी पहली ज़िंदगी वालों की मिसाल दे दूँ, 8 चीज़ें, मेरा ले दिन में ना भी तो हफ्ते में कुछ 2-3 बार हम इन 8 चीज़ों में से, अपनी इन 3 चीज़ों में से किसी ना किसी को ज़रूर छोड़ते हैं, होता कि नहीं। मजबूरी बन गई, उज़र बन गया जी, ख़ानदान में मजबूरी, आज छुट्टी है, नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं वो नहीं। यानी हम दुनिया को भी तब खुश रख सकते हैं जब इन 3 चीज़ों में से किसी ना किसी को छोड़ते हैं, वो कुछ लोगों से ताल्लुक़ कायम करे और कुछ दूसरों से बेताल्लुक़ हो, ये मस्ट है। अब जब ये सारा कुछ होगा ना, तो कुछ नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। सेम थिंग, दुनिया में जीने वाला जैसे इन 3 चीज़ों को छोड़ छोड़ के जीता है ना, तो फिर जो इन 3 चीज़ों को बनाता है उसको भी इन 8 में से 1 या 2 या कभी सब छोड़नी पड़ती है। ये इकट्ठे नहीं चलते हैं। सी और सौ, आप देखिए, सी सौ, आप और मैं बैठ गए तो मैं नीचे तो आप ऊपर, और आप ज़रा नीचे आते जाएंगे तो मैं ऊपर आती जाऊंगी। ये रिश्तों की तराजू ऐसे चलती है। ये सबक नहीं आता हमें जो पाक वालों को, हमें सिर्फ इन 8 चीज़ों के अंदर उलझा के पूरा नेक बनाने की कोशिश की जाती है। इसकी वजह से आज इंडिविजुअली नेक लोग बहुत हैं माशाल्लाह, इनफरादी तौर पे नेकियां करने वाले, हज उमरे ज़कात देने वाले बहुत हैं, लेकिन जिहाद फी सबीलिल्लाह का जो कॉन्सेप्ट इस वक्त आप समझ रहे हैं, एटमोस्ट अगर दीन के लिए कोशिश ये करने वाले को बल्कि क्या कहते हैं, कतर रहमी, एक बहू और वो भी नई नवेली, शादी के दूसरे तीसरे महीने उड़ कर चली जाए कहीं ऐसे किसी काम में, तो वो सब उंगलियां मुंह में डाल लेंगे, ये क्या हो गया। और बिलफर्ज उस रात घर में दावत भी हो और वो भी बेटी और दामाद आ रहे हो, मैं कहती हूँ उस पर फतवे ना लग जाए। हम सिर्फ उतने दीनदार हैं जिसमें ये 8 चीज़ें खुश रहती हैं, जब वो दूसरी तरफ जाते हैं तो हम परेशान हैं। सहाबा रदी अल्लाह अन्हु व रदुआन क्यों बने, उनको ये टाइटल क्यों मिला, उसकी वजह बात समझ गया। कभी तो आप सोचते होंगे, मैं तो बहुत सोचती हूँ और पहले भी सोचती थी, अब तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह क्लैरिटी ही बहुत दे दी है ना। सहाबा की तस्वीर नमाज का कहीं जिक्र मिला मुझे, ना 20 रकतों का जिक्र मिला, ना रोज़ एक सपारा खड़े होके सुनने का जर मिला, ना 3 वितर पढ़ने में लंबी दुआ का तस्करा मिला, नहीं मिला, और ना मस्जिद आयशा से जा जा के रोज़ उमरे करने का तस्करा मिला, एक सफ़र में 22 उमरे लोग कहते हैं हम करते हैं, नहीं मिला मुझे जिक्र। आपको मिले तो मुझे दीजिएगा। साहबा की ये नेकियाँ थी जो आज हमारे कल्चर में बिल्कुल एलिमिनेटेड है, वाइप्ड आउट, पूरी उसको भक्त से उड़ा दिया। करने वालों को बल्कि कहते हैं ये देखो ना, हकूक़ुल इबाद नहीं पूरे कर रहे। असल में हमने अल्लाह के बहुत सारे हक बंदों को दिए होते हैं, कुरान पढ़ने के बाद वो एक एक करके अल्लाह के हक वापस लेते हैं, बंदों के हक नहीं वापस लेते। अस्तग़फिरुल्लाह, बचेंगे कैसे अगर शौहर के हक ना दिए, सास ससुर की खिदमत ना की, बच्चों की देखभाल ना की, कैसे बचेंगे हम। सिर्फ आप लोगों से कहते हैं कि आप मुजाजी खुदा नहीं है, सॉरी, इधर आए, आप मेरे हस्बैंड हैं और आपकी एक लिमिट है और मेरी भी एक लिमिट है, आपकी एक बाउंड्री है, मेरी भी एक बाउंड्री है, ला तातली मखलूकन फी मासियतिल खालिक, बस आपका मेरा मुकाम इतना है। इस बात को कुछ लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं, और जो दीन वाले होते हैं, जो समझते, वो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र ऐसी बीवी मिली कि जिसने मुझे भी सीधे रास्ते पे लगा दिया। देखो ना, शुरू में ये जाती थी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं भी खुश। क्या आपके घरों में ऐसा नहीं हुआ, शुरू में आप दीन सीखने आई, आपके घर वाले परेशान हो गए, पहला कोर्स रो रो के आंसुओं से गीले हुए, हमारी स्टूडेंट्स कहती हैं कि हमारे नोट्स में आंसू गिरे होते थे तस्वीलुल जन्ना के दौरान, किसी के साथ गुस्से में तो किसी के मियाँ कहते हैं, और कोई रोटी गर्म नहीं मिली तो वो नहीं मिली, लेकिन एक ही कहा गया था, चुप कुफ वीयकुम और कुफ अलसिनतुकुम, जुबानें नहीं खोलनी, दिल बड़ा जुबान छोटी। सब्र शुक्र से किया, आहिस्ता आहिस्ता वो चखने के, जब नूरुल्ला नूर पे आती हैं तो मियाँ सब साथ बैठे होते हैं, और हिकमतुन बालिगा वो कहते हैं, बेगम ये क्या क्लास है, हमें भी बताओ। सिर्फ ये फासला है, ये गलत है कि मेरे घर में लड़ाई दीन के लिए लगी है, वल्लाही मेरा अपना मामला खराब था मियाँ से, दीन बेचारा बदनाम हो गया, जैसे सास बदनाम होती रहती है या सौतेली माँ बेचारी बदनाम ही होती है जितनी मर्जी लाड़ को कर ले। हमने दीन को सौतेला बच्चा बनाया हुआ है, माफ़ कीजिए मुझे। अमूमन मारूफ है कि अपने बच्चे से तो रात दिन अकेले तन्हाई में माँ कितना प्यार करे कौन दिखता है, सुतेले को फिर वो कब प्यार करती है जब दूसरे देख रहे हैं। हम आज दीन को अजल तुम सिकायत अलहाज, नुमाइशी नेकियां कर करके दीन का प्यार, बड़े दीनदार हैं हम, बड़ा प्यार है अल्लाह से, बड़ा डर लगता है, और अकेले में घूरियां डालते हैं दीन को। अपनी शादियों में कहते, खबरदार तुम मेरे दीन में आए तो मैं आपको बुला लूंगी किसी एक अलग से मौके पर, इस महफिल में नहीं आप आ सकते, नहीं, इसमें आपको शर्मिंदगी हो, अच्छा नहीं आपके काबिल नहीं, या आप इसके काबिल नहीं, यानी 100 बातों की एक बात, ये रिश्तों की तराजू के अंदर डंडियां मार कर रजी अल्लाह अनहु व रदुआन का लकब नहीं मिलेगा, जन्नत मिल सकती है, लिख के रख लीजिए पूरे शरह सदर के साथ कह रही हूँ, असहाबुल यमीन में बन जाएंगे आप, शामिल हो जाएंगे, लेकिन आपको वो आला जन्नतें फिरदौस और वो मुकाम लेने के लिए इस तराजू को हाथ में पकड़ना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे कि जैसे लोग दुनिया की खातिर सब कुछ लगाते हैं ना, फिर उनको दुनिया मिलती है, आप जिसको भी कामयाब होता देखें, वो डॉलर्स दरख्तों पे तो नहीं लगते, मेहनत करते हैं मर्द, तो सुबह उठ के निकलते हैं तो रातों को आते हैं, ठीक है बेचारे कुछ के शौहर हैं वो ज़मीनें कूटते हैं और सड़कें बनाते हैं, कोई बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो अगर आपके शौहर पढ़े लिखे हैं तो उनका दिमागी काम कितना है, कभी पैसा ऐसे नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह लिख ले जिस तरह दुनिया बगैर मेहनत के नहीं आती, इस तरह आखरत भी बगैर मेहनत के बगैर कोशिश के नहीं मिलेगी, आखरत सिर्फ उन लोगों के हिस्से में आएगी जो आखरत की खातिर दूसरी चीज़ों को कुर्बान कर दें। और यहाँ ये नहीं है कि खुब अहब, ओनली एक अलिफ का फ़र्क है, और हाबिर शत डाल दीजिए, अल्लाह चाहता है इनसे प्यार करो। जुजीन अली नासिब शाहबाद पढ़ के रहे हैं सूरत आल इमरान, गालिबन आयत 12 या 13 है, यहाँ फ़र्क है तरजीह, एक को लेकर दूसरे को छोड़ना संगीन मामला है, हत्ता कि वो ही किसी इंसान के कुफर और ईमान का फैसला करता है। आप देखिए कि अल्लाह की इस दुनिया में खुले काफरों के लिए कोई कामयाबी नहीं है, इसी तरह इधर उनके लिए भी कोई कामयाबी नहीं जो कलमा ला इलाहा पढ़े, ईमान का दावा तो करते रहे, और जब इस्लाम पे कोई नाजुक वक्त आए, कोई नाजुक मौका आए, तो आखरत को पीछे डालकर दुनिया की ज़िंदगी को अपना लें। ऐसे दावेदारान सिर्फ खुशफहमियों का शिकार हैं, उनको उस दिन पता चलेगा, हत्ता याती अल्लाह बि अम्री। कभी कभी कोई बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, कहता है मैंने फर्स्ट आना है, और जब बोर्ड का एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आता है तो यकीन करें वो थर्ड भी नहीं आता, अल्लाह ना करे आपके और मेरे साथ ऐसा हो। और देखिए लोग हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं तारीफ़ें करके, हमारे बारे में फतवे दे के, फलां कितनी नेक हैं, फलां कितना काम करते हैं, फलां के घर से कितना काम हो रहा है, फलां के इल्म से कितना हो रहा है, अल्लाह करे ऐसा ही हो जो अच्छा आपका गुमान है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी कि नहीं, ठंडे ठंडे मीठा मीठा और कड़वा थू थू, ये दीन नहीं होगा। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपने लिए अमल के रवैये इख्तियार करने वाला बना दे। नोट कर लीजिए कुछ काम जो इस हिस्से में हमें अल्लाह की रज़ा वाले मिले, मस्जिदों की खिदमत करना, और मस्जिद के साथ फिर दीन का हर काम, वो मदरसा है, वो ऐसी जगह है जहाँ से लोगों को नमाजी बनाया जा रहा है। देखिए अगर मस्जिद की खिदमत इतना अजर है, तो वो जगह जहाँ नमाजी तैयार होते हैं उनकी कितनी खिदमत होगी। आज के दौर में आपके मेरे हर पैनी पैसे माल, आगे आए तार ये ज़कात की 11वें पारे में, तो अभी से नोट कर लीजिए, आज के दौर के एक मुसलमान के एक एक रुपए का से लेके हजारों लाखों अरबों रुपए का बेस्ट मसरफ दीन की नशर इशाअत है। दीन नहीं मिला ना, ये कुरान पहला होता तो दुनिया का ये हाल होता, और हमारा पाकिस्तान इतना प्यारा पाकिस्तान ऐसा उजड़ा पुजड़ा होता? इल्म नहीं है, पैसा है इधर, इल्म नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तकवा नहीं है, और ये रिश्तों की सही बांट नहीं है। तो लिहाजा हिदायत पे मर मिटिए, आप और मैं, हमारी नस्लें बच जाएंगी अगर इस दीन की नशो इशात में खप जाए। चलिए आज की दुआ दे देती हूँ आपको कि आज आप जब इफ्तार कर रही होंगी ना, आखिरी 10 मिनट आपने वहाँ बैठकर सिर्फ अपने और अपने बच्चों से दुआएं करानी है। आज ही दुआ करें, अल्लाह मुझे चुन ले, अल्लाह मेरे घर को चुन ले, अल्लाह मेरे बच्चों को चुन ले, मेरे बच्चों के बच्चों को चुन ले। किस लिए? वजालना लिल मुत्तकीना इमामा। सीने की ठंडक है ये, कोई शुक्र आपको नहीं होगी, आप ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होंगे, यानी अल्लाह आपको अपनी फिक्र ही नहीं लगाएगा। ये तो अल्लाह उनको लगाता है जो फिक्रों में खुले रहते हैं, और अल्लाह सब बीमारों को सेहत दे दे। फिर इस्लाम दुश्मन कराबत दारों को दिली दोस्त नहीं बनाना, अपनी फैमिली के नाम पे अल्लाह की नाफरमानी की महफिलें अटेंड नहीं करनी। वो सगा बेटा आपको कहता है, अम्मा मैंने अपने वलीमे वाले दिन औरतों को नचवाना है, और मैंने फलां कॉन्सर्ट करवाना है, और अम्मा मैंने आपको वहाँ बिठाना है, तो आप कहते बेटा लकुम दीनकुम वली दीन, लकुम तुम्हारी खुशी तुम्हारे नाम, मेरी खुशी मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठूंगी। एक दफ़ा ज़रा अकड़ के तो दिखाइए, कोई भी नहीं करेगा। आप देखिए जब घरों में ये किबले बदलते हैं ना, आप फिर एक मिसालें याद आ रही हैं, क्योंकि आज मैं आपको दिल से बोल रही हूँ, पारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये बात नोट कीजिए, जब हमारे घरों में ये फैमिली सेटअप में चेंज आने लगता है ना, लेट्स सी मैं मिसाल देती हूँ कि आपकी 5 बहनें हैं, सब शुरू में एक जैसी थी। आपके भाई के घर में शादी आई, या भाई की शादी थी या कुछ और भी, पांचों एक जैसी, पांचों ने एक जैसे कपड़े बनवाए, पांचों ने एक जैसी चूड़ियाँ ली, ज्वेलरी ली, और जो रस्में रिवाज, गेटअप, मेकअप सब एक जैसी थी। आपकी अम्मा बाबियाँ सब बड़े खुश होते, कहते आज माशाल्लाह सारे बच्चे हैं। मेहंदी में भी आप थाल पकड़ के गई, चारों भी गई, आपने उपटन भी मला, आपने हर रस्म पूरी दिल जमाई से इखलास के साथ की कि शादी में से कोई एक फर्ज और सुन्नत और वाजिब और उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। 7-8 दिन की शादी थी, बड़ा मज़ा आया। अब सोचिए 1 साल गुजर गया, इन 5 में से आप समेत एक बहन को कुरान मिल गया, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह रसूल और उसके दीन की जद्दोजहद आ गई। उसने कहा सब अच्छा, लेकिन नाफरमानी नहीं। अब अगले साल आप भाई के अगले बेटे की शादी आ गई, अब आपकी माँ और आपके भाई सब क्या एक्सपेक्ट करे, वो बड़े बेटे की जैसे शादी बनी थी ऐसी इसकी होगी। सारों के एक जैसे जोड़े, 7 दिन के पांचों के 7 जोड़े, 35 जोड़े कह रहे कितने लाख बन गया, सब कुछ कर करा के। और अब इप्टन में जाएंगे और ये थाल तुम पकड़ना, ये उसमें से एक बहन जो आपकी बहन है वो कहती है सॉरी मैं वलीमे में आऊँगी, मैं निकाह में भी होंगी, मैं वहाँ वहाँ सब जगह आऊँगी, लेकिन ये मैं इस दिन नहीं आऊँगी जहाँ आपने ये सब कुछ हल्ला गुल्ला और पूरा आपने अरेंज किया हुआ। अच्छा अब क्या होगा? वो अलग हो गई बिलफर्ज, खूब आपने उसको सुनाई सुनाई, लेकिन उसको मकसद का यकीन है कि मैंने तो चरखे नीली फार्म से ऊपर जाना है। अब पता क्या होगा? टाइम हो गया, वो बेचारी कुछ नहीं, ना उलझ रही ना बहस कर रही, लेकिन आप देख रहे हैं ठंडी ठंडी है, लगता जाएगी नहीं। आप जब वहाँ जाकर पहुँचेंगे और बिलफर्ज आपकी अम्मा जी को भी आप घसीटते हुए ले गए मेहंदी की रस्म में, आप कहते थोड़ी थोड़ी देर बाद आपकी अम्मा ने क्या कहना है, वो छोटी नहीं आई, हाय वो इतनी दूर से आई थी शादी के लिए, देखो आज नहीं आई। अब आपकी वो एक ना आई ना, आप 4 के आने के अंदर भी फिक पड़ गई, रंग में भंग पड़ गया। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। वल्ला ही करके देखिए, ये रिश्तों का इम्तिहान है। जब 4-5 भाई बहनों में से एक किसी भी रस्म में शरीक नहीं होता, एक तो उन चारों को नहीं मजा आ रहा, बाकियों को, दूसरी अम्मा जी को नहीं आ रहा, उसने सारों को खपाना है, कहना देखो क्या जरूरत ही करने की, देखो मेरी बेटी नहीं आई। अब अगले साल वो एक और नहीं होगी, बस कोई एक रह गई होगी अकड़ने वाली, चारों उधर चल चुकी होंगी। ये काम साहबा ने किया था, ग्रेविटी अच्छी नहीं। हम नमाजियों के नमाजी, रोजेदारों के ना रोजेदार, और बाकी चीजों में भी हम हर जगह पाया जाना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी अवेलेबल इन एवरी प्लेस, हाजिरी करनी है, शक्ल दिखानी है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह मेरे को रुख दिखा दे, और खुदा रुखी जिंदगी दो आलम से करती है बेगाना दिल को।